एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात जरूरी है का ये एपिसोड बहुत खास है। ये एक विशेषांक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि दिसंबर 3 को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विकलांग व्यक्ति, जिसके लिए अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द दिया है, दिव्यांश। वास्तव में एक अल्पसंख्यक समुदाय है पूरी दुनिया में जो किसी राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक नहीं बनता, पर दोस्तों हर दिव्यांश व्यक्ति के आसपास रहती है एक और अल्पसंख्यक कम्युनिटी जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांश व्यक्तियों के परिजनों की, मित्रों की, गुरुओं की, जिनको कुदरत एक अलग ही ताकत से भर देती है ताकि वो अपने उस दिव्यांश बच्चे, मित्र, शिष्य या साथी का विशेष ख्याल रख पाए। इस दिव्यांश दिवस को हम समर्पित करते हैं उन दिलेर व्यक्तियों को जो किसी दिव्यांश के अधूरेपन को अपने स्नेह और अपने प्यार से मुकम्मल कर देते हैं। बॉलीवुड में ढेर सारी फिल्में बनी हैं जिनमें दिव्यांश किरदारों के संघर्ष को पर्दे पर दिखाया गया है और उनसे जुड़े उन व्यक्तियों के किरदारों को भी अहमियत दी गई है जो उन दिव्यांश किरदारों के संघर्ष को एक नया आयाम देते हैं। एक ऐसी ही फिल्म आई थी कुछ सालों पहले जिसका नाम था बबल गम। पर्याप्त प्रचार न मिल पाने के कारण ये फिल्म थिएटरों में अधिक कुछ कमाल नहीं कर पाई, पर यूट्यूब में इसे अब तक कई लाखों लोग देख चुके हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस फिल्म के निर्देशक संजीवन एस लाल हैं हमारे आज के मेहमान, जिनके साथ आज हम विकलांगता और उससे जुड़े सवालों पर बनी बॉलीवुड की फिल्मों पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। संजीवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
थैंक यू संजीव, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए। इसके लिए मैं आपके और आपके श्रोताओं का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
संजीवन सर, शुरुआत आपकी फिल्म से ही करते हैं। बबलगम एक दिव्यांश लड़के की कहानी है, पर फिल्म में उसके माता पिता और उसके भाई की जो भूमिका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विकलांगता से जूझ रहे व्यक्ति के लिए ये आसपास की कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी की बदौलत वो अपने अंदर की सकारात्मकता को उजागर कर पाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बबलगम को आप वास्तविकता के इतने करीब कैसे रख पाए? क्या कोई रियल लाइफ किरदार था आपके सामने?
बबलगम की कहानी सोचने में, लिखने में मुझे करीब करीब एक साल लग गया। मैं ऐसी कहानी की तलाश में था कि जो सस्ते से सस्ते में बन जाए, इसमें स्टार की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा ताम झाम ना हो, क्योंकि बजट नहीं होना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसी फिल्म कोई क्यों देखना चाहेगा, इसमें स्टार भी नहीं है, कोई खास प्रोडक्शन वैल्यू भी नहीं है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो लोगों से जुड़े, जो लोगों को दिल को छुए और पसंद आए, तभी तो लोग देखेंगे। तो मैं काफ़ी दिनों तक इसी उधेड़ बुन में रहा, सोचता रहा। तब मुझे अचानक एक दिन लगा कि सारे लोग जो हैं, अधिकतर लोग अपने बचपन की याद बातें याद कर करके बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि आदमी कहीं भी हो, कुछ भी बन जाए, कहीं भी चला जाए, अपने बचपन को कभी नहीं भूलता है वो, उसमें उसको अजीब सा एक आनंद आता है। तो मैं अपने बचपन में झांक कर देखा कि क्या मेरा भी बचपन कुछ वैसा ही था, और फिर मुझे लगा कि एक दौर ऐसा था जिसमें मुझे बहुत मजा आया, और वो दौर था जब मैं खुद 9वीं-10वीं के परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था, और उसी वक्त पास पड़ोस में एक नई लड़की कहीं से ट्रांसफर होकर शिफ्ट होकर आई थी। लेकिन वैसे हुआ कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद फिर वापस मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे आ गया। तो मुझे वो एक पॉइंट मिला टेक ऑफ करने का कि बबलगम एक ऐसे लड़के की कहानी हो सकती है जिसमें वो लड़का 10वीं के एग्ज़ाम देने वाला है और उसकी लाइफ में 14-15 की उम्र होती है उस वक्त, 10वीं में। तो उस वक्त उस 14-15 की उम्र में एक 14-15 साल की एक लड़की पड़ोस में आ जाती है और फिर वो दिन रात उसके पीछे में लग जाता है, फिर दुनिया उलट पुलट हो जाती है उसकी, और माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है ये लड़के को हुआ क्या। जहाँ 24 घंटे में वो उम्मीद करते हैं कि 26-27 घंटे लड़का घर में बैठ के पढ़े और कोई काम ना करे, वहाँ ये लड़का 24 में से 20 घंटे घर से बाहर ही है। तो मुझे लगा कि ये एक दौर जो है बहुत कॉमन है, हर आदमी के लाइफ में हर आदमी इस दौर से गुजरता है। तो मैं इस पर कहानी लिखना शुरू किया, लेकिन फिर एक पॉइंट पर मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक लड़का और लड़की का रोमांस दिखा के क्या कह रहा है, कुछ कोई खास कुछ नई बात तो नहीं था, नहीं थी। तभी मुझे अचानक सा एक दिन लगा कि इसमें कुछ और भी बात आनी बाकी है। और फिर मेरे मुझे ध्यान आया मेरे बड़े भाई का, जो बचपन से हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, मूक बधिर हैं। तो उनका ध्यान आया मुझे कि वो किस तरह, वो मेरे साथ बचपन में, हम लोग साथ नहीं रहते थे, वो बचपन में किस तरीके से उनको पढ़ने के लिए माता पिता, मेरे पेरेंट्स उनको लखनऊ भेज दिए थे। और उसको उन दिनों ना फेसबुक था, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। और उनको मेरे बड़े भाई को भेजने के बाद वो अक्सर परेशानी रहते थे कि वो अकेले कैसे मैनेज करता होगा, क्या करता होगा, कैसे करता होगा। और जब वो घर आता था छुट्टियों में, तो माँ बाप उसके जी हजूरी में 24 घंटे लग जाते थे। मेरे प्रति थोड़ा ध्यान कम रहता था। तो मैंने इस कहानी को उस मेरे भाई के अनुभव को उस ट्रैक से जोड़ दिया
जी। और यही आपकी फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया। अच्छा संजीव सर, आप बॉलीवुड की फिल्मों पर काफी रिसर्च, आलेख आदि लिखते रहते हैं। आपकी राय में बॉलीवुड में विकलांगता के कैसे कैसे रूप दिखाए गए हैं अब तक?
मेरे ख्याल से हमारी फिल्मों में काफी अलग अलग तरीके से विकलांगता को दिखाया गया है। जहाँ तक मुझे याद है, दोस्ती, शोर, कोशिश, स्पर्श, खामोशी वगैरह काफ़ी फिल्में बनी हैं। और हाल में तारे जमी पे और मैग्रेटा विद स्टॉ, मुझे लगता है अपने अपने वक्त ये सब सारी जो फिल्में बनी थी, दर्शकों पे अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ा होगा, तभी आज तक हम इन सब फिल्मों को भूले नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं विकलांगता को लेकर, उनमें लेखक और जो डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर होते हैं, उनका पहला प्रायोरिटी होता है कि ऐसा किरदार हो, ये विकलांग किरदार ऐसा हो कि स्टार्स उसको करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अहमियत जो है, जो इम्पोर्टेंस है, वो विकलांग कैरेक्टर को दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट और जिस सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए उसको दिया, उसको देते हैं। तो इस लेवल पे मुझे एक हमेशा खलता रहा है कि जो मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है वो ज़रा कम है। आप बाहर की फिल्मों में देख लीजिए, हॉलीवुड की फिल्में हो या किसी भी वर्ल्ड सिनेमा में देख लीजिए, जो मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी उनके यहाँ है, जिस मैच्योरिटी, वो हर लेवल पे वो फिल्म जो है परफेक्ट होता है, कम्प्लीट होता है। लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा कमी है कहीं। लेकिन फिर भी जो फिल्में जो हमारे यहाँ बनती हैं और जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट पर, इस इशू पे, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि अभी हालिया फिल्म बनी थी हमारे यहाँ हाल में, तारे जमी पे। अब डिसलेक्सिया पे ये पहली बार है इस तरीके की फिल्म कोई बनी। इससे पहले लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो इस फिल्म बनने के बाद ही ये फिल्म बहुत चर्चित हुई थी, लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में मालूम हुआ। लोग थोड़ा डिसलेक्सिया से सफ़र करते हुए बच्चों की तरफ थोड़ा सेंसिटिव हो गए थे। तो इसका श्रेय इस फिल्म के लेखक अमोल गुप्ते और आमिर खान को जाता है, वरना कहाँ इसको क्या पता चलता।
जी, अक्सर दिव्यांश व्यक्ति के साथ देते माता पिता या गुरुओं को दिखाया जाता है फिल्मों में, पर संजय लीला बंसाली की खामोशी ले लें या फिर अभी हाल ही में प्रदर्शित पीकू में इसके उलट दिव्यांश माता पिता के लिए काम करते बच्चे भी दिखाए गए हैं। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड की सोच का दायरा अब जरा फैल रहा है?
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल्में सिर्फ विकलांग बच्चों पर ही बने। माँ बाप भी विकलांग होते ही हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो उम्र के साथ साथ विकलांग हो ही जाते हैं। इसलिए फिल्में उन पर भी बननी चाहिए ताकि अवेयरनेस हो, लोगों के बीच में जागरूकता फैले और उनकी समस्या भी लोग समझें। ब्लैक खामोशी और पीकू देखकर तो यही लगता है, हमारी फिल्में बदल रही हैं, बदलना भी चाहिए। कब तक लोग एक ही किस्म की फिल्म देखते रहेंगे? एक ही किस्म का खाना खाते खाते तो हर कोई ऊब जाता है, चेंज तो चाहिए। लेकिन हाँ, इतना अब समझ में आने लगा है कि जब तक कहानी में कोई नयापन नहीं हो, कोई दम नहीं हो, आम लोगों को, दिल को नहीं छुए, तब तक कोई भी स्टार इस फिल्म को नहीं चला सकता। अगर कहानी अच्छी हो और स्टार साथ में हो तो फिर तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन बॉलीवुड भी थोड़ा सा और सीरियसली लिया जाए और हॉलीवुड के साये से निकलकर लोग को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे जाने। तो वो अलग ही बात है।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम।
दोस्तों, ये प्रेरणादायक गीत था फिल्म शोर से। एक मुलाकात जरूरी है का ये एक विशेष एपिसोड है, जिसमें आज हम बॉलीवुड में दिव्यांश किरदारों पर बनी फिल्मों पर एक चर्चा कर रहे हैं बबलगम जैसी संवेदनशील फिल्म के निर्देशक संजीवन लाल से। संजीवन सर, संवेदनशीलता के पैमाने पर आप दिव्यांश सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों में से टॉप 5 फिल्में कौन सी देखते हैं बॉलीवुड में?
टॉप 5 फिल्म, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा मुझसे। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से जवाब देने वाला हूँ, थोड़ा बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे हिसाब से दोस्ती, शोर और स्पर्श, ये 3 बेहतरीन फिल्में हैं। मुझे खामोशी और ब्लैक भी ठीक ठाक लगी। गुलजार साहब की कोशिश भी बचपन में देखी थी, मुझे देखा था मैंने, लेकिन इन फिल्मों से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। की वजह यह है कि मैं एक विकलांग भाई के साथ पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और मैं जितने अच्छे तरीके से विकलांग लोगों को समझता हूँ, उनके समाज को समझता हूँ, उनकी मानसिकता समझता हूँ, उनका साइकोलॉजी समझता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी फिल्म मेकर्स और राइटर्स नहीं समझते। इसका मैं उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोशिश फिल्म में एक सीन था, संजीव कुमार और जया भादुड़ी का जो फर्स्ट बॉर्न होता है, वो पहला बच्चा, वो उसकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। होता यूँ है फिल्म में कि दोनों सो रहे होते हैं रात में, और बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, तो बच्चा जो है रात को रोता है, रोते रोते उड़ जाता है, और माँ बाप को पता नहीं चलता। संजीव कुमार और जया भादुड़ी के जो कैरेक्टर हैं उनको पता नहीं चलता है, और बच्चा बिस्तर से नीचे गिरता है और क्रॉल करते करते बाहर बारिश में चला जाता है, और अगला दिन सुबह मरा हुआ पाया जाता है। अब इस हादसे के बाद जब उनको दूसरा बच्चा होता है, तो दूसरे बच्चे का ये हस्त दोबारा ना हो, तो उनका सोल्यूशन वो निकालते हैं कि अपने एक मित्र को, ओम शिवपुरी जो अंधे हैं, अंधे पात्र का कैरेक्टर प्ले किए हैं, उनको वो ले आते हैं अपने घर में, और उसी कमरे में वो भी सोते हैं फर्श पे, जमीन पे, और पैर में, संजीव कुमार के पैर में रस्सी बांध देते हैं कि रात को जब बच्चा रोता है तो ओम शिवपुरी साहब जो सुन सकते हैं लेकिन अंधे हैं, लेकिन वो रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं, और संजीव कुमार का पैर जो है वो हिलने लगता है, और उससे वो समझ जाता है कि बच्चा उठ गया, और उठ के फिर बच्चे को चुप करा देते हैं। ये सीन जो था अपने आप में बहुत गलत था। इस तरीके से कोई भी माँ बाप अपने पैर में रस्सी बांध कर रात को नहीं सोएगा, न सोता है। जितने भी मूक बधिर लोग हैं, जिनके भी बच्चे हुए हैं, इस तरीके का काम कोई नहीं करता है। मैंने अपने घर में देखा है, जब मेरे बड़े भाई और भाभी को पहला बच्चा हुआ था, तो वो भी रात में उठता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो साथ में रहते थे, उन्होंने कभी पैर में रस्सी बांधने की कोशिश नहीं की, ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने क्या किया था, घर में एक इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवा दी थी, एक एक्स्ट्रा बल्ब लगवा दिया था, जिससे रात को जब भी बच्चा रोते हुए उठता था तो वो सुनकर अपने कमरे से स्विच दबाना शुरू कर देते थे, और उस स्विच की वजह से वो लाइट जो है उनके कमरे में ऑन ऑफ होता था, और उस लाइट की रोशनी से वो उठ जाते थे और चुप बच्चे को देख रोते हुए देख कर चुप करा देते थे। अब वो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन हुआ जिसमें आपने ना उनका मजाक उड़ाया और प्रॉब्लम भी सेंसिटिवली सॉल्व हो गया। तो ये जो सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी चाहिए एक समस्या को हैंडल करने के लिए, ये मैं थोड़ा कम पाता हूँ इन लेखक और डायरेक्टर्स के साथ, क्योंकि इन्होंने इतने करीब से किसी विकलांग व्यक्ति को देखा नहीं है, ना उनके साथ वो कभी रहे हैं, ना उनका, मुझे लगता है कि उनका रिसर्च डिपार्टमेंट भी काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो मैं जब फिल्म देखता हूँ तो मैं नॉर्मल ऑडियंस की तरह नहीं देखता, मैं एक विकलांग भाई, विकलांग व्यक्ति के छोटे भाई के तौर पे देखता हूँ, और मुझे ये सब चीज़ें देखता हूँ तो मुझे काफ़ी खलता है। इस वजह से मेरे लिए ये कहना कि टॉप 5 फिल्मों में आप बताइए थोड़ा ये आपने मुश्किल पैदा कर दिया मेरे लिए, तो मैं सिर्फ इन 3 फिल्मों का नाम लेकर स्पर्श, दोस्ती और शोर का मैं चुप रहना बेहतर समझूंगा।
तो संजीवन सर, अगर मौका मिले आपको तो आप क्या इस तरह के विषयों पर और फिल्में बनाना चाहेंगे भविष्य में?
बिल्कुल बनाना चाहेंगे, उनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और पॉजिटिव स्टोरीज तो हो ही नहीं सकता। तो मैं तो हमेशा स्टोरीज की तलाश में रहता हूँ, और जहाँ मुझे लगा कि ये स्टोरी है जिस पे फिल्म बनाई जा सकती है किसी विकलांग व्यक्ति की लाइफ पे या उनके स्ट्रगल्स पे, क्योंकि उनके साथ बात ऐसी है कि मतलब हम तो, मतलब लोग कहते हैं कि हम विकलांग नहीं हैं, हम हमारे सारे मतलब चीज़ जो हैं वो पूरे हैं, मतलब दो हाथ है, दो पैर है, दिमाग है, आँख है, सब कुछ है, और हमें, हमारे में किसी तरीके का कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कभी कभी कि विकलांग लोगों से ज़्यादा विकलांग तो हम हैं, कि सब कुछ होते हुए भी हम बहुत बार अपने फैकल्टीज के, अपने अंग का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो लोग जो हैं जिनमें कुछ कमी है वो अपने कमी को लांघ कर उस ऑब्स्टिकल को पार करके फिर अपने आप को वो साबित करते हैं कि वो विकलांग नहीं, अपंग नहीं, वो दिव्यांग नहीं, वो मतलब हमसे भी बेहतर है। तो मैं तो ज़रूर फिल्म बनाना चाहूँगा अगर मुझे एक अच्छी स्टोरी मिल जाए तो। थैंक यू
दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिव्यांश व्यक्ति आपकी सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान और सहयोग चाहता है समाज से। संजीवन सर, आपने आज के हमारे इस विशेष एपिसोड को अपनी प्रेजेंस से और भी विशेष बना दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने बबल गम अभी तक नहीं देखी है तो आज ही देखिए यूट्यूब पर, और अपनी राय संजीवन सर तक पहुंचाएं हमारे इस पोस्ट पर अपने कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मेरे लिए भी भावनात्मक स्तर पर बहुत विशेष है, क्योंकि मैं भी इस दिव्यांश परिवार का एक सदस्य हूँ। जो कुछ भी आज हूँ आपके सामने, अपने माता पिता और अपने परिवार जिसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी शामिल हैं, और अपने सभी परम प्रिय मित्रों की बदौलत हूँ, आज का ये विशेष एपिसोड मैं अपने इसी सपोर्ट सिस्टम को डेडिकेट करता हूँ। आप भी दोस्तों, जब 2 दिन बाद हम विश्व विकलांगता दिवस या दिव्यांश दिवस मनाएं, तो उनको सम्मान और स्नेह दें जो मुझ जैसे ढेरों दिव्यांश व्यक्तियों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। अंत में सभी दिव्यांश साथियों के नाम मेरा खुद का लिखा ये गीत समर्पित है, जिसे स्वरबद्ध किया है ऋषि एस ने और गाया है विश्वजीत नंदा ने। अगली मुलाकात तक आप सब अपना ख्याल रखें। नमस्कार।
ना कमी तुझ में कोई, अब कर ले तू खुद पे यकीन, जीतेगा तू हर कदम, बस करना है खुद पे यकीन। हिम्मत बुलंद यारा, मुश्किल है जंग यारा, तुझको कसम जो छोड़े हौसले हौसले। बुलंद यारा, मुश्किल है जंग यारा, तुझको कसम जो छोड़े हौसले हौसले। खुद में मुकम्मल है तू, मंजिल के काबिल है तू, दिल से मिटा दे झूठे फासले फासले। हिम्मत बुलंद यारा, मुश्किल है जंग यारा, जीतेगा तू हर कदम, बस करना है खुद पे यकीन। तेरे काबिलियत पे होंगे तो काजे भी, बंद मिलेंगे तुझको लाखों दरवाजे भी। इन आजमाइशों से तुझको गुजरना होगा, हर इम्तिहानों पे सच्चा उतरना होगा। खुद पे भरोसा कर, खुद अपना तू साथी बन, आंधियों में जले तू ऐसी एक बाती बन। ना डगमगाए तेरा खुद पे यकीन, खुद पे यकीन। गुंजाइश गलतियों की तुझको मयसर नहीं, पर तेरी मेहनत हर किस होगी बेअसर नहीं। सोए हुनर को अपने तुझको जगाना होगा, हाँ सबसे बेहतर है तू तुझको दिखाना होगा, हाँ सबसे बेहतर है तू तुझको दिखाना होगा। दुनिया क्या सोचे तू इसकी परवाह न कर, जो कुछ हो बस में तू वो बेडर होकर कर गुजर। पड़ता ही जाए तेरा खुद पे यकीन, खुद पे यकीन।